दिन भर तारीख 17 नवंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जिम्बाब्वे में सेना द्वारा नजर बंद किए जाने के बाद आज राष्ट्रपति मुगाबे पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। रेटिंग एजेंसी मूडी ने अपनी ताजा सूची में भारत की रेटिंग बढ़ाई। विवेचना में याद करेंगे इंदिरा गांधी को, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपने खिलाफ आने के बाद वो इस्तीफा दे देती तो।
अगर इंदिरा गांधी इस्तीफा दे देती तो वो भारत के लोकतंत्र में और भारत की राजनीति में टनों सीमेंट डाल देती जिसको कोई तोड़ नहीं सकता।
सुनिएगा विवेचना, लेकिन थोड़ा सा ठहर के पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। बुधवार को सेना द्वारा नजरबंद किए जाने के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। राजधानी हरारे के एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वह गाउन में डिग्री देते नजर आए। इससे पहले सेना ने कहा था कि मुगाबे के साथ बातचीत हुई थी और उनके आसपास मौजूद अपराधियों को निशाना बनाने में कामयाबी मिली है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि मुगाबे बाहर निकलने के लिए गारंटी चाह रहे हैं। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अपने 70 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 182 सीटों पर गुजरात में चुनाव दो चरणों में होने हैं। पहले चरण का चुनाव 9 दिसंबर और दूसरे चरण का चुनाव 14 दिसंबर को होगा, जबकि 18 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि इमैनुअल मैक्रों शनिवार को लेबनान के प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने वाले साद हरीरी से मुलाकात करेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि साद हरीरी सऊदी अरब छोड़ सकते हैं। वहीं लेबनान के नेता कह चुके हैं कि साद हरीरी को उनकी इच्छा के विरुद्ध सऊदी अरब में रखा गया है। हालांकि हरीरी ने कई बार इन दावों को खारिज किया है। आप सभी जानते हैं कि कल फ्रांस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री हरीरी मुलाकात करेंगे और लेबनान इस बड़ी बाधा को दूर करेगा। स्थिरता कायम करने के लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं। ये थे लेबनान के एक मंत्री। कैटालोनिया के बर्खास्त नेता कार्लस पुज्जेमांट और उनके पूर्व मंत्रिमंडल के चार सहयोगी बेल्जियम की अदालत में पेश हुए हैं। स्पेन ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है, जिसके बाद अदालत में यह सुनवाई हो रही है। क्षेत्र की एकतरफा आज़ादी की घोषणा के बाद पांचों नेताओं ने पिछले महीने के आखिर में कैटालोनिया छोड़ दिया था। स्पेन की कोर्ट ने इनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। सहायता संस्था रेड क्रॉस ने कहा है कि सऊदी गठबंधन द्वारा यमन के बंदरगाहों की नाकेबंदी से बड़े पैमाने पर हैजा फैल सकता है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि नाकेबंदी के कारण तेल की कमी होगी, जिसके कारण पानी साफ करने के प्लांट को बंद करना पड़ेगा और इससे हैजा के नए खतरे पैदा होंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल के वरिष्ठ संपादक को यौन उत्पीड़न के आरोपों और अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। पीटीवी ने आगा मसूद शोरिश को बर्खास्त करने का कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन शिकायत करने वाली दो पूर्व कर्मचारियों ने कहा है कि एक बड़ी जीत है। तंजिला मजहर ने बीबीसी से कहा कि उन्हें कई नेताओं ने संयम रखने को कहा था ताकि प्रभावशाली निदेशक को बर्खास्त करने के कारण मिल जाए। कैमरून में संसद की मुख्य इमारत आग के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता सीआरटीवी ने कहा है कि इमारत के पीछे प्रशासनिक कार्यालयों में आग लगी थी। हालांकि जहां चर्चा होती थी उस हिस्से को बचा लिया गया है। देश के सूचना मंत्री ने कहा है कि यह घटना दुर्घटनावश हुई है। जब हम चौथी मंजिल पर पहुंचे तब तक वह पूरी तरह खाक हो चुकी थी। तब हमने इस पर जोर दिया कि हम क्या बचा सकते हैं, खास तौर पर बहस का कक्ष। जो ब्लॉक सामने बचे हैं उन्हें बचाया गया है। ये थे एक दमकलकर्मी के शब्द। केन्या की राजधानी नैरोबी में एयरपोर्ट पर मुख्य विपक्षी नेता रायला ओडिंगा से मिलने के लिए इकट्ठा हुए उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ओडिंगा ने अगस्त में रद्द हुए चुनाव को बहिष्कार किया था। वे एक विदेश यात्रा से लौटे हैं। कार से जा रहे ओडिंगा की गाड़ी पर पुलिस ने कथित तौर पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। 9 तमाम श्रोताओं से माफी जो कि हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं। हम उसमें तकनीकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए माफी उनसे। कार्यक्रम की शुरुआत हम अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में सेना द्वारा राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को नज़रबंद किए जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट ने अभी तक किसी हल पर नहीं पहुंचा है। नज़रबंदी के बाद आज राष्ट्रपति मुगाबे ने पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ऐसे में कुछ लोग जहां सेना व मुगाबे में तालमेल होने की, साठगांठ होने की बात कर रहे हैं, तो कुछ का मानना है उनके देश में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए आदर्श राठौर से।
जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे सेना द्वारा नजरबंद किए जाने के 2 दिन बाद पहली बार जनता के सामने आए। शुक्रवार को उन्होंने राजधानी हरारे में एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में डिग्रियां बांटी।
मैं अपने अधिकारों के तहत जिम्बाब्वे ओपन यूनिवर्सिटी की इस सभा को वैधानिक रूप से दीक्षांत समारोह घोषित करता हूं।
जिम्बाब्वे की सेना ने बुधवार को राष्ट्रपति मुगाबे को नजरबंद कर दिया था। सेना का कहना है कि ये कार्रवाई राष्ट्रपति के करीब जमे भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए की गई है और ये तख्तापलट नहीं है। मगर विपक्षी पार्टी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज की सांसद प्रिसिलिया मिसिहेराबी मुशोंगो ने कहा कि मुगाबे और उन्हें बंधक बनाने वालों के बीच सहयोग नजर आ रहा है।
I think there is some kind of cooperation, as some of us have indicated right in the beginning.
मुझे लगता है कि ये एक तरह से आपसी सहयोग से हो रहा है। सेना न सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि उसने तख्ता पलट नहीं किया है, बल्कि बार बार ये भी जता रही है कि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे लोगों का सम्मान करती है, और मुगाबे तो स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रतीक हैं। ऐसे में हैरानी तो इस बात से होती है कि वो बिना झमेले के हट कैसे गए।
मगर विपक्षी राजनेता सेना की कार्रवाई के बाद पैदा हुए हालात को बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। प्रमुख विपक्षी नेताओं में एक पेस्टर इवान मावारायर ने बीबीसी को बताया कि सेना द्वारा मुगाबे को हिरासत में लेने से देश को बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिला है।
Definitely we are on a road to change. This is what's happening to Zimbabwe is unprecedented. We've never seen ZANU-PF this.
हम निश्चित रूप से बदलाव के रास्ते पर हैं। जिम्बाब्वे में जो हो रहा है वो अभूतपूर्व है। हमने कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी को इस तरह से बटा हुआ नहीं देखा। ZANU-PF के लोगों को पहले कभी इस तरह से नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे आते नहीं देखा गया था। हो सकता है कि इसके पीछे उनकी अपनी वजहें हों, मगर पिछले 37 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है।
जिम्बाब्वे में बहुत से लोग मुगाबे की नजरबंदी से खुश भी नजर आ रहे हैं। हरारे में रहने वाले तेस्लीन खुम्बुला ने कहा,
We have suffered too long with this system. The army guys have come up to try to correct the system.
हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब सेना के लोग इस सिस्टम को ठीक करने आए हैं, तो ये जनाब आकर कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। क्यों? 94 साल की उम्र में आखिर क्यों? अब हम मुगाबे को और नहीं देखना चाहते। सड़कों पर जाकर देखिए, कोई मुगाबे को पसंद नहीं करता, और अब हम उनसे ये कहने जा रहे हैं कि अब आप चले जाइए।
स्थानीय नेता चाह रहे हैं कि जिम्बाब्वे में पैदा हुए इस संकट का तुरंत समाधान निकले। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति मुगाबे से इस्तीफा दिलवाने की कोशिश चल रही है, मगर वो कुछ शर्तों पर अड़े हुए हैं। वो कुछ बातों की गारंटी चाहते हैं और साथ ही सम्मानजनक विदाई भी, मगर जानकारों का कहना है कि समझौते की प्रक्रिया जटिल और धीमी हो सकती है।
जिम्बाब्वे में सेना द्वारा नजरबंद किए जाने के बाद राष्ट्रपति मुगाबे ने पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने अपनी ताजा सूची में भारत की रेटिंग को BSS3 से बढ़ाकर BAA2 कर दिया है। संस्था की रेटिंग में भारत की रेटिंग को पहले पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बताया गया था, जो कि अब स्थिर यानी कि उसे स्टेबल बताया गया है। रेटिंग में ये बदलाव एजेंसी ने 14 सालों के बाद किया है, पर सवाल यह है कि रेटिंग एजेंसी के सुधार के मायने क्या हैं और क्या इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं। हमारे सहयोगी फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
जीएसटी को लेकर लगातार हो रही निंदा के बाद निवेश के मामले में पहले से बेहतर दर्जा हासिल करना वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए फिलहाल शायद इससे बेहतर कोई और खबर न होगी, वो भी तब जब रेटिंग एजेंसी ने भारत के मूल्यांकन को तकरीबन दशक भर बाद बेहतर किया हो। खबर से खुश अरुण जेटली ने दिल्ली में कहा,
इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू इकोनॉमीज अंडरटेकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द वर्ल्ड बैंक रैंकिंग्स।
भारत दुनिया के उन कुछ देशों में है जहां अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मूलभूत बदलाव हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में हमारी पोजीशन 42 रैंक ऊपर गई, ये 3 सालों के दौरान हुआ है, जो कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और अब 13 सालों बाद भारत की रैंकिंग ऊपर गई है और मुझे लगता है कि जिनके मन में भारत में हो रहे मूलभूत सुधारों को लेकर शंका थी, वो इस मामले पर फिर से विचार करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली के शब्द। दुनिया की 3 जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक द्वारा मूल्यांकन में एक पायदान की बढ़त हासिल करना भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए अहम माने जाने वाले गुजरात चुनाव के दौरान आए हैं। इससे 2 दिनों पहले आए प्यू रिसर्च के सर्वे में बताया गया कि मोदी अभी भी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन रेटिंग में हुए इस बदलाव को आम लोगों के शब्दों में किस तरह देखा जा सकता है, जाने माने अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला।
इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बच्चा पहले पिछले साल 36% या 34% मार्क्स लाए और इस साल 38% या 40% मार्क्स लाए, तो हम बोलेंगे कि सकारात्मक है, आगे बढ़ रहा है, यद्यपि अभी भी तृतीय श्रेणी में बैठा हुआ है।
अपने मूल्यांकन में मूडीज ने यह भी कहा है कि हाल में लाया गया जीएसटी सभी राज्यों को टैक्स के लिहाज से एक क्षेत्र में बदलेगा और माल की आवाजाही में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। लेकिन मूडीज ने यह भी कहा है कि सरकार पर भारी कर्ज का दबाव मुल्क की कुल क्रेडिट प्रोफाइल पर असर डालती है, लेकिन जारी आर्थिक सुधार इसमें और गिरावट को रोकने में मदद करेंगे। मगर भरत झुनझुनवाला का मानना है कि इन रेटिंग्स को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।
वाजपेयी जी के कार्यकाल में हमारी रेटिंग बढ़ी लेकिन ग्रोथ रेट कम थी। यूपीए के कार्यकाल में हमारी ग्रोथ रेट हाई थी, रेटिंग कम थी। अब मोदी जी के कार्यकाल में रेटिंग बढ़ी है लेकिन ग्रोथ फिर से कम है। रेटिंग से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करते हैं हम, उसको ये बताते हैं कि आपको भारत में निवेश करना चाहिए, लेकिन वो निवेशक भारत में निवेश तब करेगा जब भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था में चाल होगी।
हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि रेटिंग का असर आज के शेयर और मुद्रा बाजार पर देखने को मिला और आने वाले दिनों में ये कंपनियों को बाजार से पैसा उगाहने में मदद कर सकता है। और बहुत बार विदेशी कंपनियां भारत को अपने निर्माण का बेस बनाकर माल को एक्सपोर्ट करने की नीति अपना सकती हैं।
फैसल मोहम्मद अली बता रहे थे कि किस तरह से दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडी ने अपनी ताजा सूची में भारत की रैंकिंग को बेहतर कर दिया है, बढ़ा दिया है। कार्यक्रम में अब वक्त है विवेचना का। इंदिरा गांधी अगर जीवित होती तो आज 100 साल की होती। कुछ सालों पहले एक भारतीय पत्रिका द्वारा किए गए सर्वेक्षण में उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया गया था। उन्होंने जहां एक ओर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत में भारत का नेतृत्व किया, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आपातकाल लगाने के लिए उनकी काफी किरकिरी भी हुई। उनकी जन्मशती पर उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
कौन थी इंदिरा नेहरू गांधी? भारत की आयरन लेडी या हिंदुस्तान की रानी, जैसा कि लंदन के कुछ अखबार उनके बारे में लिखा करते थे, या फिर अम्मा, जिस नाम से करोड़ों दक्षिण भारतीय उन्हें पुकारा करते थे? क्या इंदिरा दैट वोमन या वो औरत थी जिस नाम से उन्हें पाकिस्तान के डिक्टेटर याहिया खान ने पुकारा था? या क्या वो हिटलर या मुसोलिनी की महिला संस्करण थी, जैसा कि उनके विरोधी उनके बारे में कहा करते थे? इंदिरा गांधी के बारे में कोई एक राय बनाना अब भी मुश्किल है। कहा जाता है कि किसी भी शख्स के चरित्र की पहचान विपरीत परिस्थितियों में ही हो सकती है। ऐसा ही एक समय था 7 मई 1978, जब इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपने बूते पर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीता था। उस समय जब इंदिरा गांधी की राजनीतिक ओबिचुरी लिखी जा चुकी थी, उस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार और इस समय पार्टी की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई याद करती हैं।
जिस तरह से इंदिरा जी ने मेरे इलेक्शन में काम किया रेहान साहब, कोई मामूली आदमी के बस का नहीं, कोई ऐसे बिल्कुल एक मामूली वर्कर की तरह। वहाँ के एक पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे मसूद साहब, वो छोटा सा फूलपुर एक जगह थी, तो वहाँ हमें 1-2 घंटे गुजारना थे दोपहर का वक्त। और आप आजमगढ़ जैसे जगह, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई पानी, ना कोई, ये बुरी हालत, बहुत छोटा जिला, बहुत बड़ा था पर शहर बहुत छोटा और एमिनिटीज नहीं थी ज़्यादा। तो मैंने एक पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस, क्या होते हैं जो 2-1 कमरे के, वो मैंने बुक करा लिया और मैंने कहा 2 घंटे के लिए हफ्ते पहले। उसके बाद जब मैं वहाँ ठीक दोपहर में इंदिरा जी को लेके पहुँची तो सारे में ताले बंद और एक बूढ़ा चौकीदार वहाँ बैठा बाहर। वो कहने लगा कि कमरे तो ना खुली, मिनिस्टर साहब ठहरे हैं यहाँ। तो मैंने कहा बाबा तुम्हें मालूम है कौन आया है, किसके लिए मैं कह रही हूँ? कहने को आवा है। तो मैंने कहा कि इंदिरा गांधी आई। रेहान साहब मैं आपको क्या बताऊँ, लगा कि उसको करंट छू गया, खट से खड़ा हुआ और उसने गाली दी कि चाहे रहे जाए नौकरी। उसने पूरे 2 कमरे थे दोनों खोल लिए, बिल्कुल साफ, कुछ भी नहीं था। कि ये जज्बा था गरीबों का इंदिरा गांधी के। सराय में हम लोग ठहरे, कोई भी आज का मामूली वर्कर नहीं ठहर सकता, एक मामूली वर्कर की तरह उन्होंने काम किया। छोटे से छोटी जगह ठहरी, वो हैंडपंप होते थे तो वहाँ अपना खड़ी हो जाती थी, गर्मी में चला रही हूँ, वो अपना मुँह पे पल्लू पानी डाला, पल्लू से पोछा जल्दी, कौन ऐसे कर सकता है।
इससे भी 10 महीने पहले बिहार के एक गाँव बेलची में जब 11 दलितों की हत्या हुई थी, तो इंदिरा गांधी बाढ़ के पानी की परवाह न करते हुए हाथी की पीठ पर सवार होकर वहां पहुंची थी। उस यात्रा में उनके साथ गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बताते हैं।
जब हम लोग गए बेलची की ओर तो हरनौत के पास आगे जाना मुश्किल था, सड़क नहीं थी और पानी था वह। तो हम लोगों ने गांव की तरफ से एक हाथी का बंदोबस्त किया, उसी पर हाथी पे चढ़ इंदिरा जी गयी और हम लोग बहुत लोग पैदल भी गए, पानी हेल के गए, कपड़े उठा के गए, लेकिन इंदिरा जी वहाँ पर गयी। एक छोटा सा गांव था वहाँ पे और बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने अपनी फरियादें उठ रखी। वहाँ काफी देर रही, एक एक महिला से बच्चे से इंदिरा जी मिली, बातचीत की और बड़ी सहानुभूति दिखाई वहाँ से। वहाँ लौटते समय शाम हो गई, रात हो गई और वही इंदिरा गांधी शुरुआत थी।
याद कीजिए एक और उपचुनाव चिकमंगलूर 1978, जब इंदिरा गांधी जनता पार्टी के भारी विरोध के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को हराकर संसद में पहुंची थी। इंदिरा गांधी की जीवनीकार सागरिका घोष बताती हैं।
एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर, ये था उस टाइम का नारा, क्योंकि ये फीलिंग था कि सारे जो जनता के सारे बड़े बड़े नेता एकजुट हो गए थे, वो सारे इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, वो सारे इंदिरा गांधी को कुचलने की कोशिश कर रहे थे और इंदिरा गांधी अकेली औरत लड़ रही थी उनके खिलाफ। इंदिरा गांधी की ये एक बात थी कि जब भी वो कैंपेनिंग के लिए निकलती थी वो लिक्विड डाइट करती थी, शी यूज़ टू नॉट ईट। इन दोज डेज एयर कंडीशन कार्स तो थे नहीं, तो इन दैट हीट शी यूज़ टू ट्रैवल इन नॉन एसी कार्स, फल और बादाम ये सब खा करके वो कैंपेनिंग करती थी। और उनका जो फिजिकल स्टैमिना था, जो शेयर फिजिकल स्टैमिना, कैपेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस, ये बहुत बहुत ही हाई था। शी कुड वॉक, शी कुड रन।
इंदिरा गांधी की प्रतिभा को सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डिगॉल ने पहचाना था। 1978 में अमरीका जाते हुए इंदिरा गांधी एक दिन के लिए पेरिस में रुकी थी। डिगॉल ने उनके सम्मान में दिन का भोज दिया था। पूरे भोज के दौरान इंदिरा उनसे फ्रेंच में बात करती रही। बाद में इंदिरा की मित्र और जीवनीकार पुपुल जयकर ने अपनी किताब में लिखा,
उस भोज में मौजूद लक्ष्मीकांत झा ने मुझे बताया था कि डिगॉल पूरे समय इंदिरा को परखने की कोशिश कर रहे थे। भोज के बाद डिगॉल ने मुझसे कहा था, राजनीति में महिलाओं के आने के बारे में मेरी सोच थोड़ी दकियानूसी है, लेकिन आपकी प्रधानमंत्री में गजब की ताकत है, उनमें कुछ खास है, वो सफल राजनेता साबित होंगी। डिगॉल की मौत से कुछ समय पहले आंद्रे मालरो ने उनसे पूछा था, इंदिरा गांधी से पहली बार मिलकर आपको कैसा लगा था? डिगॉल का जवाब था, उनके नाजुक कंधों पर भारत का भाग्य टिका हुआ है और वो उसके बोझ से दबे नहीं दिखाई देते।
इंदिरा गांधी का स्वर्णिम क्षण था 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी हवाई हमले के समय वो कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। देर रात दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, तीनों सेनाध्यक्षों से मुलाकात की और रात 12:30 बजे लगभग कांपती हुई आवाज में देश को संबोधित किया।
आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अम्बाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे संदेह नहीं है कि सारी भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं।
12 दिसंबर को जैसे ही खबर मिली कि अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में घुसने वाला है, इंदिरा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने का फैसला किया। उस समय भारतीय वायुसेना के विमान चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे ताकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जमा हुई भीड़ पर हमला न कर सके। उस समय जाने माने पत्रकार प्रभाष जोशी भी उस जनसभा में मौजूद थे।
जब इंदिरा गांधी दिल्ली में राज कर रही थी तो ऐसा लगता था कि भारत एक ताकत है। ऐसा लगता था कि भारत दुनिया में कोई अपनी स्वतंत्र हस्ती बना के रह रहा है, क्योंकि वो एक नए भारत का ऐसा आत्मविश्वास अपने जरिए प्रकट करती थी जिसको आप हम सब शेयर कर सकते थे। यानी मुझे वो क्षण याद है जब दिल्ली के रामलीला मैदान में बांग्लादेश के युद्ध के बाद सभा हुई, तो उसमें वो जो एक अपने गायक थे ना महेंद्र, वो उन्होंने बेटी हिंदुस्तान की गीत गाया था। रेहान साहब, मैं इंदिरा गांधी को लेके भावुक नहीं होता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को कंधे पर बिठा के लेके गया था और जब महेंद्र कपूर ने वो गाना गाया तो मैं खड़ा हुआ और बेटे को कंधे पर लेकर कहा कि बेटा ताली बजा।
16 दिसंबर को ठीक 4:31 पर इंदिरा गांधी के लाल फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ भारत के थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ थे। उस समय इंदिरा स्वीडिश टेलीविजन को इंटरव्यू दे रही थी। उन्होंने टीवी क्रू से थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा और तेज कदमों से लोकसभा की ओर बढ़ी।
I have an announcement to make, which I think the House has been waiting for some time. The West Pakistan forces have unconditionally surrendered. Dhaka is now the free capital of a free country.
उस समय दर्शक दीर्घा में इंदिरा की दोस्त पुपुल जयकर भी मौजूद थी। बाद में उन्होंने उनकी जीवनी में लिखा,
जब मैं दर्शक दीर्घा से बाहर आई तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री अपने कार्यालय के सामने खड़ी हुई हैं और उन्हें बहुत से सांसदों ने घेर रखा था। मुझे देखकर वो आगे बढ़ आईं। हम शायद 30 सेकंड के लिए मिले होंगे, लेकिन मुझे याद है उन्होंने मुझे गले लगाया था। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने उनसे विदा ली तो उन्होंने मुझसे फुसफुसा कर कहा, क्या हमें शांति भी नसीब होगी।
लेकिन 1975 आते आते इंदिरा की लोकप्रियता फीकी पड़ने लगी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें चुनावी अनियमितताओं का दोषी मानते हुए रायबरेली से उनका चुनाव रद्द कर दिया। इस्तीफा देने के बजाय उन्होंने अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और आपातकाल की घोषणा कर दी।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए।
उनके इस कदम को न सिर्फ उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल माना गया बल्कि इससे भारतीय जनमानस में उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा। उस समय उनके नजदीकी सलाहकार रहे अशोक पारसारथी याद करते हैं।
I have never agreed and I do not agree today that the declaration of emergency.
मैं उस समय भी सहमत नहीं था और आज भी सहमत नहीं हूं कि आपातकाल की घोषणा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से निपटने का सही समाधान था। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक वेकेशन जज ने अपने नजदीकी लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि अगर इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करती हैं तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर देंगे, बशर्ते इंदिरा गांधी पहले अपने पद से इस्तीफा दे दें।
मैंने अशोक पारसार्थी से पूछा कि इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उस जज और अपने सलाहकारों की बात क्यों नहीं मानी।
An absolutely bizarre view that if she left the Prime Minister's chair,
उनका ये बड़ा अजीब ख्याल और डर था कि अगर उन्होंने सिर्फ एक घंटे के लिए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी तो उनके मंत्रिमंडल का कोई वरिष्ठ सहयोगी उस पर कब्जा कर लेगा और उसे कभी भी उनके लिए नहीं छोड़ेगा। मैं, मौनी मल्होत्रा और नटवर सिंह इस मुद्दे पर बातचीत किया करते थे और हम लोगों ने तय किया कि नटवर सिंह उनसे मिलकर उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपने उद्देश्य में सफल हो नहीं पाए।
राजनीतिक टीकाकार प्रभाष जोशी का भी मानना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा न देने से इंदिरा गांधी का कद बौना हो गया और इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी कि वो हकदार थी।
देखिए, सबसे अच्छा ये होता कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था तो वो कहती कि जब तक स्टे लगा हुआ है मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगी, मैं पद से इस्तीफा देकर जब सुप्रीम कोर्ट मेरे नाम को क्लियर करेगी तब मैं फिर से प्रधानमंत्री होंगी। वो अपनी खड़ाऊ निकाल कर किसी को भी सौंपती, कोई मैं तब इतनी ताकत नहीं होती कि वो नैतिक या राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी को चुनौती दे सकता था। यानी आप सोचिए कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद इस देश में ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्वीकार्य हुई बजाय कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के नाते। अगर इंदिरा गांधी इस्तीफा दे देती और उस तक का रास्ता देखती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उनको क्लियर करती है तो वो भारत के लोकतंत्र में और भारत की राजनीति में टनों सीमेंट डाल देती जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था।
इंदिरा गांधी विवादास्पद जरूर थी, उनकी एक जटिल शख्सियत भी थी, लेकिन कोई उनकी अनदेखी नहीं कर सकता था। वो स्टीरियोटाइप राजनीतिक कतई नहीं थी। उन्होंने प्रचलित मानदंडों की कभी परवाह नहीं की। टैगोर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो उन्हें भी बहुत पसंद थी। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब आपको बताते हैं कि कल बीबीसी इंडिया बोल में क्या है चर्चा का विषय।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शताब्दी वर्ष। कुछ लोग उन्हें भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं तो कुछ उन्हें निरंकुश शासक। इतिहास किस तरह से याद करता है इंदिरा गांधी को, इस शनिवार 18 नवंबर को बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, एक भूल सुधार। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम में कहा था कि दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत की रेटिंग को BSS3 से बढ़ाकर BAA2 कर दिया है, तो संशोधन इस बात का कि सूची में भारत की रेटिंग को BAA3 से बढ़ाकर BAA2 कर दिया गया है। और अब चलते चलते खेल की खबरों का जिक्र कर लेते हैं कि कोलकाता के ईडन गार्डन में आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन था। मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम 32 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 74 रन ही बना पाई। और उधर चीन में खेले जा रहे चाइना ओपन सुपर सीरीज में पीवी सिंधु आज बाहर हो गई। पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में चीन की खिलाड़ी गाओ फांजी ने 21-11 और 21-10 से हरा दिया। इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त हो चला है।
बीबीसी समाचार। बुधवार को सेना द्वारा नजरबंद किए जाने के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अपने 70 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि इमैनुअल मैक्रों शनिवार को लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी से मुलाकात करेंगे। कैटलोनिया के बर्खास्त नेता कार्लस पुज्जेमोंट और उनके पूर्व मंत्रिमंडल के 4 सहयोगी बेल्जियम की अदालत में पेश हुए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम में आपसे मुलाकात तय है। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।